नमस्कार, मैं उमाशंकर अग्रवाल आज के मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबका बहुत प्रेम से स्वागत करता हूं। हम सबके साथ यहां पर उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदर्भ सब जोन की इंचार्ज आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा रानी दीदी जी। दीदी जी, आपको नमस्कार। दीदी जी के विषय में हम आपको ये बता दें कि आदरणीय दीदी जी गत 56 वर्षों से लगातार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकान के केंद्र में संचालिका रहते हुए कार्य कर रही हैं और दीदी जी ने समाज के हर क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान के काम किए हैं। आज वे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी जो कि खेल, खिलाड़ी और खेल भावना से संबंधित हैं। और दीदी जी ने 14 वर्ष की आयु से, जब अत्यंत बाल्यकाल था उनका, तब से उन्होंने ब्रह्म कुमारी इस केंद्र को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इनके संदेशों को और परमपिता परमात्मा शिव क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, क्या इनके कर्तव्य हैं, इन सब बातों को दीदी जी लगातार बताती रही हैं। और दीदी जी के संपर्क में जो भी आया है उसने अपने जीवन में अनेक प्रकार के समाधान प्राप्त किए हैं। आज के इस सत्र में दीदी जी आपके हर समस्या का समाधान यहां पर प्रस्तुत करेंगी। सबसे पहले चेतन सुभाष बक्सी, मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना प्रश्न दीदी जी के सामने रखें।
बॉलिंग करते समय मैं जिस टारगेट पर बॉल फेंकता हूं वह बॉल टारगेट पर न जाते हुए कहीं बाहर चले जाती है, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है, तो इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊं?
बॉलिंग करते हैं तो एक लक्ष्य होता है कि मैं अगले खिलाड़ी को कैसे आउट करूं, उस लक्ष्य से इनका बॉल भटक जाता है। ये चाहते हैं कि आप इनका समाधान करें ताकि अपने लक्ष्य को ये पाएं।
इसके लिए खेलते समय नेगेटिव विचार नहीं होना चाहिए कि वो आउट हो। ये विचार मन में रहे कि मैं जीतूं, ये एक स्वाभाविक है, कार्य वही होता है, आउट करेंगे तब वो आप जीत पहनेंगे, या आप जीत पहनेंगे वो आउट होगा, वो तो होना ही है। क्योंकि खेल माना जीत और हार। इस संसार के अंदर भी हम रहते हैं, जीवन में हार जीत होती रहती है। तो एक तो पहले बुद्धि में रखो कि ये जीत हार, एक की जीत एक की हार होनी है। उसके लिए मन को तैयार करो। दुख आपके मन में होता है, ये भी एक निश्चय रखो, अगर अगला व्यक्ति आज जीता है मैं हारा हूं, तो मैं सदैव हारने वाला नहीं, वो सदैव कोई जीतने वाला नहीं, कभी उसकी जीत होगी कभी मेरी जीत होगी। तो दोनों बातों के अंदर खुश होकर के एंजॉय करिए। हमने ये भी देखा है जब खेल पूरा होता है तो जीतने वाले और हारने वाले जाकर के जीतने वाले को मुबारकबाद भी देते हैं, गले मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात हमें लगती है। तो जब स्थूल में आपको वो करते हो तो अपने मन को क्यों दुखी करें? तो दोनों में प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता आपका अपना खजाना है। और आगे के लिए निश्चय रखिए कि आगे दोबारा मेरी अवश्य जीत होगी।
दीदी जी ने कहा कि हमें दूसरे को हराना नहीं है किंतु स्वयं जीतना है। बहुत ही सुंदर ये बात। खेल खिलाड़ी के अंदर में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसकी ओर दीदी जी ने संकेत किया। दूसरे प्रश्न के लिए आकाश नरेश गौरे।
जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सामने वाले हमारे से ज्यादा ही अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय हमारे मन में कुछ अलग निराशा होती है।
इसका कारण है कि आपके मन में उनके प्रति ईर्ष्या पैदा होती है, कि वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और ये ईर्ष्या कैसा अवगुण है जो हमारे भी कदम पीछे खींचता है। एक दो की टांग पीछे खींचने के एक सूक्ष्म में भावना है, पर अगर हमें निश्चय है कि ये खेल है, खेल खेल में हम अपना हाल खराब न करें, अर्थात मानसिक स्थिति को खोए नहीं, इसलिए कहा जाता है हर व्यक्ति के साथ रीस नहीं करो पर रेस करो। किस कारण से वो अच्छा खेल रहा है, मैं भी उस कारण का निवारण करके मैं भी अच्छा खेलूं। अगर आप ईर्ष्या करते रहेंगे, उससे अपने आप को कम समझते रहेंगे, अपने अंदर हीन भावनाएं पैदा करेंगे, तो आप कभी भी अच्छा नहीं खेल सकेंगे। ये निश्चय रखो, जब वो खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता हूं। अगर वो फर्स्ट डिवीजन में अगर से एग्जाम भी दे, वो आगे बढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता हूं। तो उसको पॉजिटिव में लो, नेगेटिव साइड नहीं जाओ जो आपके मन को दुख होए।
प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या, इसका संकेत दीदी जी ने दिया। प्रतिस्पर्धी होना ठीक है, किंतु ईर्ष्या करना ठीक नहीं है। ईर्ष्या करने से नकारात्मक और निराशाजनक भावों में वृद्धि होती है, जो हमारी प्रगति के अंदर बहुत बड़ी बाधा है। अगले प्रश्न के लिए आइए हम चलते हैं पवन मेंडुले की ओर।
जब मैं बैटिंग करता तब तब दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते, तो वो बैटिंग के समय गलत होता हूँ।
पहले आप चेक करिए किस प्रकार के नेगेटिव ख्याल आते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये आपके अपने मन की बात है, दूसरों की तरफ से कोई समस्या नहीं है। कई बार कईयों दूसरों की तरफ से समस्या आती है, ये आपके अपने मन का तूफान है। क्यों आता है? क्या मुझे भी दूसरे से रीस होती है, दूसरे मेरे से आगे ना बढ़े, क्या ये मेरे मन में भावना आती है? या मुझे कुछ घर के ख्याल आते हैं, नेगेटिव किस प्रकार के आते हैं, उसको आप पहचानो पहले और उसको निवारण करो, क्योंकि आप भी ये जानते हो नेगेटिव थॉट्स कभी भी उन्नति करने नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ी एक बाधा है। इसको आप एक बड़ी नदी भी कह सकते हो, नदी बहती है तेज रफ्तार से, इसी तरह से नेगेटिव विचार उसकी जब प्रवाह शुरू हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी स्पीड के साथ बढ़ते रहते हैं। ये नेगेटिव थॉट एक पहाड़ी है, जो मैं उसके पार जाना चाहूं तो भी नहीं जा सकता हूं। ना आप नदी क्रॉस कर सकेंगे, ना पहाड़ क्रॉस कर सकेंगे, पर जीतना अर्थात पहाड़ को क्रॉस करना, नदी नाले को क्रॉस करना। नदी नाला भी अगर बहता है तो कुछ रुकावटें आते हैं, उनको भी दूर करता है। तो मैं नेगेटिव को दूर करके आने वाली बाधाओं को दूर करूं, क्योंकि अगर एक वो बाधक बन जाएगी तो आपको फ्रेश मूड में नहीं रखेगी, क्योंकि खेल के अंदर सबसे पहले चाहिए हमारा फ्रेश माइंड। जब माइंड एक्टिव होगा तब हमारे हाथ भी ठीक चलेंगे, पांव भी ठीक चलेंगे। तो इसलिए पहले अपने मन के ऊपर नियंत्रण करो, उसके लिए ये थोड़ी मन की एक कमजोरी है। तो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इतनी वीकनेस अगर है, तो आप परमात्मा पिता जो सर्वशक्तिवान है उनसे शक्ति लो। शक्ति लेने के लिए कुछ कुछ समय बीच बीच में मेडिटेशन करो, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। आप उसके लिए कुछ पॉजिटिव विचारों को तेजी से बढ़ाओ। आप केवल सोचे नेगेटिव को खत्म करो नहीं होंगे, उसकी जगह के ऊपर चेंज में कुछ पॉजिटिव विचार बनाओ, उनकी स्पीड को बढ़ाओ, तो ये ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। और जीत का आधार है पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए उसको समाप्त करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें समय, तन की शक्ति, मन की शक्ति सब खत्म हो जाती है।
अपना अध्ययन करो, अपने भीतर झांको, देखो कहां से ये जन्म ले रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग, कहां से ये पैदा हो रही है, और उस बाधा को दूर करो। बाधा दूर करने का बहुत ही सुंदर, सरल और सहज उपाय है योग। योग में भी सबसे सर्वमणि योग जो है राजयोग है, जिसकी शिक्षा और दीक्षा आपको यहां दी जाती है। अगला प्रश्न जिसके लिए हम बढ़ते हैं आर संजय की ओर।
जब मैं 90 रन तक पहुंच जाता हूं तब तक मैं ठीक खेलता हूं, लेकिन उसके बाद बहुत नर्वस हो जाता हूं तो खेल नहीं पाता हूं।
तक पहुंचना चाहते हैं
और 90 में रुक जाते,
वहां नर्वस हो जाते हैं,
इसलिए कभी भी हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारो। आज अगर आपने जब शुरुआत की थी तो क्या पहले दिन से 90 पे पहुंच गए थे? पहले जरूर 10 पे गए होंगे, फिर 20 पर, 30 पर, आगे बढ़ते गए। जब 90 तक पहुंच जाते हो तो 100 तक भी पहुंच जाओगे। इसलिए अपने आप को आशा अपने में कम नहीं करो, हिम्मत कम नहीं करो। जैसे आप सबने सुना हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर जो व्यक्ति चढ़ा कई बार नीचे उतरा, चढ़ नहीं पाया, पर उसने हिम्मत रखी। हिम्मत वो रखी कि मेरे को चढ़ करके ही दिखाना है। क्यों? जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट है, ना तो वो कम होगा ना वो बढ़ेगा, वो स्थिर है, क्योंकि वो पत्थर है। वो स्थिर रह सकता है, मैं इंसान हूं, मैं क्यों रुक जाऊं? मैं जरूर माउंट एवरेस्ट तक जा सकूंगा। उसके निश्चय ने, आत्मविश्वास ने उसको आखिर ऊपर चढ़ाई दी। तो इसलिए आप भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करो।
निश्चय और आत्मविश्वास ये दो चीज ऐसी है कि हिमालय पर्वत को भी पार करने में आपको सहायता करेगी। एक शतक नहीं, आप बहुत से शतक बना सकेंगे, बशर्ते कि आपके अंदर निश्चयात्मक भावना की दृढ़ता हो, प्रबलता हो। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रणधीर सिंह।
मैं जब नेट में खेलता कोई प्रेशर नहीं रहता, जब मैच में बैटिंग करने जाता तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता।
ग्राउंड पे खेलते समय दीदी प्रेशर में नहीं रहते हैं, किंतु जब मैच खेलने जाते हैं तब दिमाग में प्रेशर हावी हो जाता है, निराकरण चाहते हैं उसका।
इसका कारण है अपने आत्मविश्वास की कमी है। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई ठीक नहीं करता, आपको भी अनुभव है, एग्जाम के समय में उसकी वो हिम्मत कम हो जाती है, क्योंकि वो अभ्यास नहीं किया है। तो आप अपने खेल के अभ्यास को भी थोड़ा बढ़ाएं और लक्ष्य रखें, मेरे को जीत करके ही रहना है। मैं हिम्मत क्यों हार दूं? तो ये खेल के मैदान में बहुत बहुत जरूरी होती है, चाहे खेल के समय, चाहे मैदान के समय, या हर समय भी अपने आप में उत्साह रखो। उत्साह की कमी है, औरों को खेलते देखते हो थोड़ा उत्साह आता है, बाद में कम हो जाता है, क्योंकि उस समय हो सकता है आप दूसरे विचारों में चले जाते हो। इसलिए अपने उत्साह को बढ़ाइए, निराशा को खत्म करिए, आशावादी बनो।
उत्साह को बनाए रखो, मुझे हारना नहीं है किसी कीमत पे भी, निराश भी नहीं होना है, और दूसरों को देखकर प्रेरणा लो, प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। ये हमको दीदी जी ने बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है, और ऐसी ही किसी और शिक्षा के लिए मैं श्री विनोद इंगले से निवेदन करूंगा।
जैसे कि मैं बॉलर हूं, एक बॉलिंग जब डालता हूं नेट्स में या मैच में, तो बॉलिंग में अगर बॉल जैसे खराब जाता है तो दिन भर मेरे मन में वही रहता है कि बॉल ऐसे खराब गिरी, वो नहीं गिरना चाहिए, तो इससे कैसे बचा जाए फिर?
उस समय अगर गिर भी गई तो क्या सोचने से वो समय ठीक होगा? जो समय निकल गया निकल गया, उससे आप लेसन लीजिए, ना कि आप बीती बात का चिंतन करिए। क्योंकि जितना अगर उस चीज को सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया, बार बार वो होते रहेंगे, तो आपकी जो है क्या शक्ति कम नहीं हो जाएगी? दोबारा के लिए आपके अंदर उमंग उल्लास क्या रह सकेगा? बीती बात का चिंतन करना और आगे का समय वर्तमान भी व्यर्थ करना और आगे के लिए भी निराशावादी बन जाना। एक कहावत है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधर ले, जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे के लिए सावधान हो जाओ, इसलिए उसको भूलना सीखे। क्योंकि भूतकाल गया, वर्तमान और भविष्य को ना बिगाड़ो, उससे कुछ लेसन लो, पाठ पढ़ो कि कहां मेरी कमी रही, कहां मेरी कमजोरी रही, कहां मेरे हाथ से निशाना छूट गया। कुछ ना कुछ कारण होता है, या तो बॉलिंग करते समय मेरा ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला गया, जो मेरा निशाना छूट गया, तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए बीती ताई विसार दे, आगे की सुधर लो, बीती भूलते जाओ। क्योंकि जैसे हम आगे चले जाते हैं, पिछली जगह अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ो, आगे अटेंशन से चलो।
बीती ताही विसार दे, आगे की सुधी ले, जो बॉल चला गया अपने हाथ से, चाहे वो गलत हो सही हो, वो तो चला गया, उसके लिए आने वाले सारे दिन को बिगाड़ना किसी कीमत पर भी उचित नहीं। ये दीदी जी का हमारे लिए संदेश है, और ऐसे ही सुंदर संदेश के लिए अब हम अथर्व मोहरिल की ओर चलते हैं।
हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हमें हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
दिनचर्या हमारी सबसे पहले अमृत वेले से शुरुआत, प्रातःकाल श्रेष्ठ विचारों में, श्रेष्ठ संकल्पों में बीतेगा, प्रभु चिंतन में बीतेगा, तो दिन भर के लिए शक्ति भर जाएगी। जैसे पहले समय में घड़ी होती थी, उसको चाबी देनी होती थी, चाबी भरते थे, 24 घंटा वो घड़ी चलती थी, फिर दूसरे दिन चाबी भरनी पड़ती थी। तो अमृत वेले का या प्रातः काल का जो समय है, वो देखा जाए, हमारे मन को एक चाबी भरना है, तो उसको आप बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत करें। परमात्मा को कुछ समय बैठ करके जरूर याद करें, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प करें। श्रेष्ठ संकल्पों से उसकी शुरुआत करें, फिर जिस जिस कार्य के लिए जो समय है हमारा स्कूल कॉलेज में जाने का, समय पर तैयार होकर के उसमें जाइए। आपकी दिनचर्या के अंदर जो भी दिन के अंदर आपकी चली, माता पिता से शेयर करिए। उससे या दिनचर्या बिताने में कोई कठिनाई आई हो, कोई की तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हो, आप माता पिता को जरूर बताइए, तो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आप समय पर सोइए, फिर प्रातः काल उठिए। तो जो एक हमारी दिनचर्या स्थूल में अच्छी चलेगी, तो उन्नति में कोई चीज हमें बाधक नहीं बनेगी। और इसमें भी कहा जाता है पढ़ाई और खेल और नींद, आराम भी शरीर को बहुत जरूरी है। और माता पिता के साथ, परिवार वालों के साथ स्नेह जरूरी है, इसका बैलेंस चाहिए। नहीं तो कभी इसमें किसी में भी हम कमी अदा करते हैं तो हम स्पीड से नहीं चल सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूंगी, अगर हमारा एक पांव छोटा हो, एक पांव बड़ा हो, तो क्या हम ठीक रीति से चल सकेंगे, क्या खेल सकेंगे? तो अगर हमारे कुछ रिश्तों में फर्क होगा या बैलेंस नहीं होगा, तन का बैलेंस नहीं तो मन का भी बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं रहा, मन में श्रेष्ठ विचार नहीं रहे, वो एक उत्साह की उमंग की बातें नहीं रही, तो सफलता कोई भी रास्ते पर नहीं मिल सकती है।
दिनचर्या का शुभारंभ अमृत वेला अर्थात प्रातः काल से होना चाहिए। उठने के बाद हम उस परमपिता परमात्मा को अवश्य याद करें जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है। दिनचर्या में हमारे किसी प्रकार का विखंडन, बाधाएं न आए, इसके लिए समय पर भोजन, समय पर निद्रा, समय पर जागरण, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के अंदर में सफलता के लिए। इसके बिना हम सफल नहीं हो सकते। दीदी जी का ये संदेश हमने सुना, और अब कुंवर इंद्रजीत सिंह एक प्रश्न करेंगे हमारे सामने, जिसका उत्तर आदरणीय दीदी जी देंगी।
एक स्पोर्ट्स पर्सन का खान पान कैसा होना चाहिए और पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
तो उसके लिए जैसे खेल के लिए हमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, शारीरिक शक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है, वो भी भोजन शक्तिशाली होना चाहिए। शक्तिशाली के नाम के ऊपर ऐसे नहीं कि हम नॉनवेज खाएंगे तो शक्ति आएगी, ये करेंगे तो शक्ति आएगी, परंतु वास्तव में अगर एक तरफ वो शक्ति भी देगी तो दूसरी तरफ से नुकसान भी करती है, वो तन को भी करती है और मन को भी करती है। मन हमारा तामसिक बनता है, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो मनसा का हमारा मानसिक शक्ति का ह्रास होगा, दूसरा शरीर के अंदर वो चर्बी को ऐसा बढ़ाएगा जो आगे चल के हमारे हार्ट के ऊपर असर करेगा। तो जो चीज दिल और दिमाग दोनों को बिगाड़ती है, तो उस चीज को हम सेवन क्यों करें? वास्तव में ये भोजन जिसको नॉनवेज कहते हैं, यह मनुष्य के लिए है ही नहीं। शास्त्रों में भी आता है कि ये ऐसी चीजें कौन लेता था, ऐसे लेने वाले को राक्षस कहा जाता है। तो ये राक्षसी भोजन अगर हम खाएंगे, हैं मनुष्य भोजन राक्षसी खा रहे हैं, तो हमारी वृत्ति कैसी हो जाएगी? राक्षसी। राक्षसी वृत्ति वाला हर एक एक दो को नुकसान पहुंचाता है, दुख देता है। तो हम परमात्मा सुखदाता के संतान होने के बावजूद हम केवल एक राक्षसी भोजन करके, राक्षसी वृत्तियों को ला करके हम दुख क्यों किसी को दें? अब आप कहेंगे शरीर को तो शक्ति चाहिए, उसके लिए क्या करें? तो आप देखिए शुद्ध भोजन के अंदर शक्तिशाली बहुत चीजें हैं। जैसे कि बादाम रात को भिगाएं, तीन ही बादाम भिगाइए, सवेरे खा लीजिए, बहुत शक्ति देगा। दूध लीजिए, बहुत शक्ति देगा। अंकुरित अन्न खाइए, बहुत शक्ति देगा। अंकुरित अन्न अर्थात शायद आप लोगों को, कोई को पता होगा कोई को नहीं, ये जो कड़ धान्य होता है, मूंग है, मोठ है, चना है, गेहूं भी उसमें ले सकते हैं, मेथी दाना भी ले सकते हैं, उसको भिगाओ, एक रात भिगाओ, रात को डाल दो, सवेरे कपड़े के अंदर बांध करके उसको एक दिन पर 24 घंटा पूरा रखिए, तो उसके अंदर अंकुर निकल आएगा। अंकुर निकलने के बाद उसको थोड़ा एक बार गर्म पानी में थोड़ा हल्का बॉयल करें और उसके बाद उसको निकाल दे पानी को, और उसको आप नाश्ते के पहले स्वीकार करो। उसके बाद डॉक्टर ये भी कहते हैं जब नाश्ता करो तो जो सब्जियां हैं, गाजर है, मूली है, कच्चा टमाटर है, काकड़ी है, ऐसी चीजें खाओ, फिर भरपेट नाश्ता खाओ। ये चीजें अगर हम अपने रेगुलर रखेंगे तो हमारे शरीर को बहुत शक्ति मिलेगी, फिर आपको जो है राक्षसी भोजन खाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे हेल्थ भी अच्छी होंगी और हमारा मन भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए शुद्ध शक्तिशाली भोजन को ही स्वीकार करें।
आहार ऐसा होना चाहिए जो हमें शक्ति प्रदान करे, और शक्ति प्रदान शाकाहार ही कर सकता है। आज का ये मार्गदर्शन कार्यक्रम अब यहीं पर विराम लेता है। ऐसे ही किसी आयोजन में हम और आप फिर एक बार कभी ना कभी आमने सामने होंगे। दीदी जी हमारे साथ होंगी, एक बार फिर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।